ओम शांति। आज हमारे बीच में ये बेहद यज्ञ के ऐसी विशेष प्रतिभा उपस्थित है जो अथक बन के सेवा में बिजी होते हुए भी इजी रहते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर सचिन भाई का हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आप 2003 में आपको बाबा का ज्ञान मिला, 2010 से आप पूर्ण रूप से समर्पित ग्लोबल हॉस्पिटल में आपकी सेवाएं दे रहे हो और आपकी एक निराली पहचान, आपका अलौकिक जन्म अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि से ही हुआ है और तब से आपने यह पक्का कर लिया, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, संसार ही मेरा बाबा है। और आपके अंदर अदम्य विचार सागर मंथन की कला भी है, तन को तंदुरुस्त और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सदा ही मार्गदर्शन आप करते रहते हो। तो अभी हम सुनेंगे सचिन भाई से आज की मुरली का रिवीजन। सचिन भाई,
क्लास की शुरुआत बाबा से वरदान लेकर करेंगे। सभी स्थिर बैठ जाएंगे। ज्योतिर्मयी काल ज्योतिर्मयी काया में विराजमान मैं एक प्रकाशमयी आत्मा हूं। भ्रुकुटी तत्व पर बैठे चेतना का बिंदु मैं आत्मा अति तेजोमय हूं। संपूर्ण शांत स्थूल देह जैसे लोप हो गया है और बच गई केवल मैं आत्मा। तेजस्वी आत्मा और अब धीरे धीरे इस व्यक्त संसार को छोड़ मैं आत्मा अपनी प्रकाशमयी काया के साथ चलते हुए ऊपर मैं फरिश्ता हूं। देह के भवन से जिसका रिश्ता टूट चुका है, मैं फरिश्ता हूं, मैं एक स्वरूप ज्योतिर्मय फरिश्ता, बुद्धि का पाव इस संसार से परे, मैं फरिश्ता उड़ रहा हूं ऊपर आकाश की ओर और ऊपर कंचन काया जगमगाती काया सूक्ष्म शरीर के साथ मैं फरिश्ता पहुंच जाता हूं सूक्ष्म वतन में, स्वयं व्यक्त बाप दादा सम्मुख है, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और उसी दृष्टि से बाबा मुझे आज तीन वरदान दे रहे हैं। दृष्टि की यह विरल धारा मुझ आत्मा पर है, बच्चे सदा भाग्यवान भागा, बच्चे खुशी का खजाना बांटने वाले सदा महादानी भागा, अनुभव कर रहा हूं दृष्टि से ही यह वरदान मुझे प्राप्त हो रहे हैं। बच्चे रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले अविनाशी रूहानी गुलाब भवा, ईश्वरीय वर्षा इन वरदानों की, मैं फरिश्ता इन वरदानों को प्राप्त कर नीचे उतरता आकाश में हूं, मैं खुशी का फरिश्ता हूं, मैं भाग्यवान फरिश्ता हूं, देख रहा हूं आंखों के सामने संसार की दुखी आत्माएं, संसार की तड़पती हुई आत्माएं, अशांत आत्माएं, भटकती आत्माएं, मार्ग की तलाश करती हुई आत्माएं, और मैं फरिश्ता अपने महादानी स्वरूप में स्थित हूं, मेरे हाथों से मस्तक से और नैनों से खुशी के प्रकंपन संसार की आत्माओं को मिल रहे हैं। सभी दुखी आत्माएं इन रश्मियों को पाकर सुख का और शांति का अनुभव कर रही है। इस संसार का सबसे महान तीर्थ, विशुद्ध संस्कृति का सर्वोत्तम द्वीप मधुबन भूमि की ओर, उसी शांति स्तंभ की ओर नीचे नीचे आ रहा हूं और पुनः अपने देह में प्रवेश करता हूं। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ हीरा मैं आत्मा अविनाशी खुशबू फैलाता, मैं फरिश्ता इसी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हूं। भगवान के महावाक्य सुनने के लिए तत्पर हूं। ओम शांति। यात्री आगे बढ़ा। एक दूसरे मजदूर से उसने वही प्रश्न किया कि तुम क्या कर रहे हो। ये मजदूर भी थोड़ा सा दुखी था, उदास भी था, कहने लगा कि मैं कमाई कर रहा हूं, जीवन यापन के लिए अपनी मेहनत से कमाई कर रहा हूं, क्योंकि परिवार है उसकी संभाल करनी है, उनका पालन करना है, पोषण करना है। यात्री और थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक तीसरा मजदूर है, परंतु उसकी आंखों में कुछ और ही चमक है। वो गुनगुना रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, पत्थर भी तोड़ रहा है, परंतु चेहरे पर कोई एक दूर दुनिया की चमक थी। उस मजदूर से उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कहानी सभी ने सुनी है। उस मजदूर ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। कार्य एक ही था, परंतु चित्त दशा अलग अलग है। कार्य एक ही है, परंतु भाव अलग अलग है। किसी के लिए वो कठोर पत्थर है, तो किसी के लिए वो जीवन यापन का साधन है, और किसी के लिए वो परमात्मा का कार्य है। जीवन ही आनंद से झूम रहा है, आनंद मगन हो गया है। वो यात्री लौट गया। कई सालों के बाद फिर आया यह देखने के लिए कि उन मजदूरों का क्या हुआ। तो पाया कि जो पहला मजदूर था अब भी पत्थर ही तोड़ रहा है जैसे पहले तोड़ता था, अब भी वैसा ही दुख, अब भी वैसा ही क्रोध, अब भी वैसा ही आवेश, अब भी वैसी ही जीवन के प्रति नकारात्मक भावना। दूसरे मजदूर को देखा, ढूंढने में थोड़ा समय लगा क्योंकि अब तक वो सेठ बन चुका था, अब उसके पास ऐसे 50 और दूसरे मजदूर थे। तीसरे का क्या हुआ होगा कौन बताएगा? क्या बन गया राजा? क्या बन गया होगा? पुजारी? अरे अरे क्या बन गया होगा? पूज्य बन गया होगा वो। तीसरे मजदूर को ढूंढने निकला, मिला नहीं, बहुत ढूंढा और देखा कि ये क्या, ये कौन फरिश्ता है, ये कौन मसीहा है, ये कौन दिव्य आत्मा है जो जन जन में परमात्मा संदेश फैला रहा है, भगवान की वाणी, परमात्मा वचन उसके मुख पे है, वो पत्थर नहीं तोड़ रहा। पत्थर तोड़ना तो छूट चुका है, जो बाप ने कहा उनके मुख की वह आवाज है। मुरली में एक जगह आया है प्रश्न में, बाप के गले में कौन पिरोए जाते हैं? जो बाप ने कहा उनके मुख में वही आवाज निकलती है। ऐसे जो है जिनके मुख से बाप के गुण और बाप का ज्ञान और बाप की महिमा निकलती है, वह उसके गले के हार है, वह उसके गले में पिरोए जाते हैं। किस भाव से हम कार्य कर रहे हैं, स्वयं को देखना है, अमृत वेले उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पत्थर तोड़ रहा हूं, कमाई कर रहा हूं या गा रहा हूं? भोजन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पत्थर तोड़ रहा हूं कि कमाई कर रहा हूं या जीवन आनंद से झूम रहा है? सेवा में जा रहे हैं, क्या कर रहा हूं? पत्थर तोड़ रहा हूं, रोज वही वही सेवा, रोज का वही वही कार्य, क्या इस भाव से कर रहे हैं या फिर वही वही लोग, वही वही स्थान, उसी प्रकार की सेवा किस भाव से कर रहे? वही भोजन, पत्थर तोड़ रहा हूं, कमाई कर रहा हूं कि आहा नाच रहा हूं? नाच रहे, माता जी कह रही है नाच रहे हैं, क्या कर रहा हूं? किसने दिया है भोजन, किसने भाग्य का सितारा चमकाया है, किसने भाग्य, किस समय कौन सी वो वेला थी, कौन सा वो समय था जब भाग्य उदय हुआ? तो कितने हम भाग्यशाली हैं जो भगवान ने चुना है। क्या मैं कर रहा हूं, स्वयं को देखना है, किस चित्त दशा से और किस भाव दशा से हर कार्य कर रहा हूं, कैसी दिनचर्या व्यतीत हो रही है, क्या जीवन आनंद से भरा हुआ है, आनंद से पुलकित है? भगवान को पाकर आनंद प्राप्त करना है या पहले आनंद पाना है और फिर मिलन मनाना है? क्या उत्तर कहेंगे? पहले ही आनंदित है और फिर भगवान से मिले तो खुशी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना उसने दे दिया है तो आज की मुरली कौन किससे मिल रहा है या कौन क्या देख रहा है? भाग्य विधाता बाप क्या देख रहा है? बच्चों को देख रहा है, क्या देख रहा है? बच्चों के त्याग को देख रहा है और भाग्य को देख रहा है, भाग्य बड़ा अद्भुत शब्द है। भाग्य के जैसे भाषा में तीन और शब्द है, परंतु भाग्य सर्वोत्तम शब्द है। एक है भाग्य, दूसरा है तकदीर, फिर है किस्मत, और एक बहुत दूर का एक शब्द है नसीब। भाग्य में 100% पॉजिटिविटी है, तकदीर ऊपर नीचे तकदीर भी पॉजिटिव ही है, थोड़ा दूर, उससे थोड़ा दूर किस्मत, और थोड़ा ज्यादा दूर नसीब। हाय रे मेरा नसीब, भाग्य क्या क्या किया और भाग्य क्या पाया। ऐसे कौन है जो समझते हमने बहुत त्याग किया और यहां आके थोड़ा सा पाया? कोई भी नहीं। बाबा कह रहे हैं त्याग क्या किया, किसको त्यागा है तुमने? जो शूद्र है उसको त्यागा है, जो नीच है, जो छोटा है, जो अशिष्ट है, जो अकल्याणकारी है, जो अशुभ है, जो अमंगलक अमंगलकारी है, इसको त्यागा है। और पाया क्या? एक गुना त्याग किया और पाया कितना? पदम गुना। कैसा आध्यात्मिक गणित है यह। सृष्टि चक्र में 7 अवस्थाएं हैं। शूद्र कुमार से क्या बन गए? ब्रह्मा कुमार। शूद्र कुमार या शूद्र कुमारी से ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी से बाबा ने कहा ये त्याग किया है तुमने, इस त्याग का फल तुम्हें मिला है, वो फल क्या है? ब्राह्मण जीवन। तीसरी अवस्था ब्राह्मण जीवन। चौथा फरिश्ता, पार्टियों से मुलाकात। क्या बनते हो? ब्राह्मण सो फरिश्ता। पांचवा देव कुमार और देव कुमारी, और छठवा पूज्य कुमार और पूज्य कुमारी, और सातवां भक्त कुमार और भक्त कुमारी। इन सातों ही अवस्थाओं में सृष्टि का यह चक्र है। क्या हमने खो छोड़ा क्या और पाया क्या? जो छोड़ा है, अगर कोई व्यक्ति अपने घर की अच्छे से सफाई करता है और सारा किचड़ा बाहर फेंकता है तो क्या उसका सत्कार होता है? क्या त्याग किया? क्या इसे त्याग कहेंगे? क्या छोड़ा? जो छोड़ा वो शूद्र जीवन था, शूद्र खान पान था, शूद्र संबंध थे, विकार थे, देहभान था, वासनाएं थी। जो बेकार था उसको छोड़ दिया, और जो काम का था उसको ले लिया। एक माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को लेकर एक बार एक नाटक देखने जाते हैं। नाटक की टिकट खरीदते हैं, परंतु वो टिकट वाला कहता है कि खबरदार, अगर बच्चा रोया तो थिएटर से बाहर कर देंगे। अगर बच्चा रोया तो हाँ, चाहे जितने टिकट के पैसे वो सारे तुमको वापस दे देंगे, पर बच्चा रोना नहीं चाहिए। दोनों अंदर जाते हैं, नाटक चालू होता है, आधा पूरा होता है। पति अपने पत्नी से कहता है नाटक कैसा है? वो कहती है एकदम बेकार, एकदम बोरिंग। तो पति कहता है देरी किस बात की है, लगाओ एक चुटकी। जो बेकार है उसको लगाओ एक चुटकी और बाहर निकल आ जाओ। क्या बेकार को ही देखते रहेंगे? जो व्यर्थ है, जो शूद्र है, जो नीच है, ऐसे को छोड़ देना। और पाया क्या? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, त्याग क्या किया? मुरली वैसे भाग्य के ऊपर है, त्याग की महिमा भी अपरंपार है, वो कभी और सुनाएंगे। कहा है क्या छोड़ा? जो व्यर्थ था वो छोड़ दिया, जो नकार था वह छोड़ दिया, जो शूद्र था वह छोड़ दिया। ऐसे कौन कौन है जो शूद्र कुमार से ब्रह्मा कुमार बने और ब्रह्मा कुमार से ब्राह्मण, पर फिर बीच से जाकर शूद्र कुमार या कुमारी भी बनते हैं? वो शूद्र कुमार जीवन अभी भी आकर्षित करता है, जाकर थोड़ी देर वो बनते फिर से ब्रह्मा कुमार, फिर शूद्र कुमार, फिर ब्रह्मा कुमार, फिर शूद्र कुमारी, फिर ब्रह्मा कुमार। क्या ऐसी यात्रा तो नहीं कर रहे, उल्टी यात्रा? क्या भाग्य पाया है हमने, सभी से प्रश्न है। कितने जन्मों का है, 21 जन्मों का या 84 जन्मों का? मुख्य तो 21 जन्मों का है, तो 21 प्रकार के भाग्य बताओ, कभी बताएंगे। 21 नहीं, बहुत है। किस किस भाग्य को पाया है? बाबा तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, भाग्य, खजाना और तीसरा प्राप्ति। प्राप्ति की लिस्ट सामने हो, भाग्य की लिस्ट सामने हो, खजाने की लिस्ट सामने हो, और उसी स्मरण में रहो, उसी चिंतन में रहो, तो उदासी नहीं आ सकती। क्या पाया है? भाग्य की तुलना इस मुरली में चार चीजों से की है बाबा ने। पहला तो भाग्य लकीर है, इस लकीर को क्या करो, अब और लंबी और स्पष्ट कर दो। भाग्य सितारा है, इस सितारे को क्या करो, चमकाओ। दूसरा, तीसरा, भाग्य अधिकार है, इसे प्राप्त करो। कितना प्राप्त करना है, अपने पुरुषार्थ पर है। ये भाग्य क्या है, प्रॉपर्टी, जायदाद, मिल्कियत, वखर, क्या कर दो इसको, दो चीजें करो इसके साथ, एक तो संभालो और दूसरा बढ़ाओ। तो भाग्य क्या है, लकीर भी है, सितारा भी है, तो प्रॉपर्टी भी है, तो अधिकार भी है। जन्म होते ही अधिकार प्राप्त हो गया, जैसे जन्म हुआ प्राप्त हो गया, जन्म सिद्ध अधिकार है भाग्य। वरदान, वरदाता द्वारा वरदान मिल गया, समय को भी वरदान है, हमें तो वरदान मिला ही है, ऐसा नहीं किसी को एक, किसी को 10 गुना और किसी को 2 गुना, सबको समान मिला है। तो सबसे पहले चर्चा तो इस बात की करते हैं कि हमने कौन से भाग्य पाए हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्वयं से। पहला भाग्य है स्वयं का परिचय, हमें अपना परिचय प्राप्त हुआ, हम ही नहीं जानते थे हम हैं कौन। स्वयं का परिचय, स्वदेश का परिचय, स्वधाम का परिचय, स्वस्वरूप का परिचय, स्वलक्ष्य का परिचय, सब कुछ अब प्राप्त हुआ। क्या ये भाग्य नहीं है? कितना बड़ा ये भाग्य है, संसार की आत्माओं के पास परिचय ही नहीं है, क्या है, बस भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं, अंधकारमय जीवन है। हमें तो लक्ष्य प्राप्त हो गया है, तो सबसे बड़ा भाग्य तो ये है। दूसरा, परमात्मा, वो कौन है, वो कैसा है, वो कहां रहता है, उसका क्या स्वरूप है, कैसे वो आता है, किस समय वो आता है, नेचर ऑफ गॉड, जो किसी को नहीं पता वो हमें पता हो गया। तीसरा भाग्य, उसके साथ का भाग्य, उसके साथ का भाग्य, वो हमारे साथ साथ चल रहा है, जैसे कि छत्र छाया है। मोहम्मद पैगंबर के लिए बताया है कि अरब की उस रेगिस्तानी भूमि में वो जब चलते थे तो ऊपर से बादल ऊपर से चलता था उसको परछाई देने के लिए। पिछले संडे कहा था बाबा ने, छत्र छाया है बाप, जहां हम वहां उसकी छत्र छाया, माया की छाया पड़ नहीं सकती इस छत्र छाया में, तो उसका साथ। चौथा, उससे मिलन, साकार में मिलन। इन आंखों ने किसको देखा है, इन कानों ने किसको सुना है, किसकी वो वाणी है, किसका वो रूप है जो सामने बैठा है, सभी ने देखा है उसको, उसको देखने का भाग्य, उससे मिलने का भाग्य, उसको सुनने का भाग्य। अगला, उसके मदद का भाग्य, हेल्प, प्रेम का, मदद का, साथ का। उसको मदद करने का भाग्य। एक विदेश की माता जब बाबा से मिलने आ रही थी, फ्लाइट से उतर रही थी, तो वहां पर किसी ने पूछा, एयर होस्टेस ने, आप क्या करते हो? तो उसने बड़े नशे से कहा, हम भगवान को मदद करते हैं। आज तक तो ये सुना था कि भगवान से मदद मांगी जाती है और हम क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं। भगवान की मदद करने का भाग्य, विश्व सेवा का भाग्य, अगला पवित्रता का भाग्य, संपूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है, यह सबसे बड़ा भाग्य है। कितना सुख है इसमें, अपवित्रता में क्या दुख है वो सभी ने देख लिया है। दर्द, दुख और पीड़ा के अतिरिक्त विकारों में कुछ भी मिला नहीं। सच्चा सुख संपूर्ण पावनता में है, पवित्रता का भाग्य, योग का भाग्य। योग की जो विधि बाबा ने सुनाई है, जो ड्रिल सुनाई है, जो सिखाई है, राजयोग, लोग तो आसन करने को ही योगा कहते हैं, योग का भाग्य, मुरली का भाग्य, कितना बड़ा भाग्य है कि वो सम्मुख बैठ रोज सुनाता है। वरदानों का भाग्य, रोज नए नए वरदान। श्रीमत का भाग्य, संसार में असंख्य मते हैं, मनमत भी है और परमत भी है, परंतु भगवान ने श्रीमत द वे, यूअर वे, माय वे नहीं, द वे, क्या करना है और क्या नहीं, उसका भाग्य। अगला संगम युग का भाग्य, अगला किस स्थान पर बैठे हैं हम, धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। नाथ ने पैर रखे इस भूमि पर, भगवान के चरण कमल से यह भूमि पुनीत हुई है। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो कहां जाओ, आ गए सभी, तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। ऐसा ये मधुबन का भाग्य, भोजन का भाग्य, ये तो मुख्य है, तोली का भी भाग्य, ब्रह्मा भोजन का भी भाग्य, किस भाव से खा रहे हैं पर वो भी है। क्या कंप्लेन का भाव है, क्या हो भाव है, धन्यवाद का भाव है, गुनगुनाते हुए गा रहे हैं, किसका दिया हुआ है, या नमक कम है, तेल कम है, कौन सा भाव है? अहोभाव, धन्यवाद, संतुष्टता का भाव, सेवा का भाग्य, सेवा का भाग्य, किसने दी है ये सेवा, संसार के लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कदम कदम में पदम जमा कर रहे हैं, सेवा का भाग्य। और ईश्वर से सर्व संबंधों का भाग्य, ईश्वरीय परिवार का भाग्य, ऐसा परिवार संसार में कहीं नहीं। सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषाओं से ऊपर, कोई भेदभाव नहीं यहां, ऐसा प्रभु परिवार, ईश्वरीय परिवार, गॉडली फैमिली, ऐसा अलौकिक परिवार, ऐसा अलौकिक संगठन और कहां होगा संसार में, उसका भाग्य, इस यज्ञ का भाग्य। ये यज्ञ किला है एक, इस किले के अंदर जो है वो सुरक्षित है, विकर्म यहां नहीं होते, किले से बाहर जाओ विकर्म चालू। स्वयं को इस किले में रखना, गढ़ है ये, किला है, फोर्ट है, इस किले में रहने का भाग्य, कितना बड़ा भाग्य है, भाग्य अनगिनत है, खजानों का भाग्य, सर्व प्राप्तियों का भाग्य, या इन भाग्य की, इन प्राप्तियों का, इन भाग्य का हम कितना चिंतन कर रहे हैं। यदि नहीं हो रहा है तो व्यर्थ होगा मन में, निगेटिव होगा मन में। निरंतर यदि यही चिंतन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं आ सकता। फिर बाबा ने कहा है सबको समान भाग्य दिया है। ईश्वरीय सौगातों का भाग्य, ऑफर्स, गिफ्ट्स का भाग्य, ईश्वरीय श्रृंगार का भाग्य। कितना सारा श्रृंगार कर दिया है हमको। स्वर्ग का भाग्य, फरिश्ता बनने का भाग्य, देवता बनने का भाग्य, पूज्य बनने का भाग्य, ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग्य तो कौन सा है? इस डिवाइन एलिवेटेड सर्वश्रेष्ठ जीवन का भाग्य। क्या कर रहे थे और अब क्या बन गए, कैसे थे, क्या ये त्याग कहेंगे इसे? जो व्यर्थ था उसको छोड़ दिया और इतना सब मिल गया सहज। मुरलियों में राजा भरतहरि की कहानी आती है। भरतहरि और उसका पड़ोसी राजा गोपीचंद दोनों ही अपने राज्य को छोड़कर वैरागी हो गए थे, ऐसा बताया है। दोनों ने ही संन्यास ले लिया, परंतु कहीं ना कहीं उस त्याग का भी थोड़ा अहंकार था। दिखाया है कि एक बार दोनों ही एक सरोवर के पास आते हैं और स्नान करने के लिए अपने कपड़े एक खूंटी पर टांगता है पहला तो राजा भरतहरि। थोड़ी देर के बाद वहां राजा गोपीचंद आता है, जो कि अभी सन्यासी है, वो भी सन्यासी है, वो भी अपने कपड़े उसी खूंटी पर टांगता है। जब दोनों बाहर आते हैं तो दोनों में लड़ाई होती है, जबकि दोनों ने ही संसार का परित्याग कर दिया था, क्योंकि संसार को व्यर्थ जाना। और दोनों की अब लड़ाई, वहां एक बूढ़ी माता आती है, वो कहती है अरे तुम जरा सीखो, एक तो वो राजा गोपीचंद है और एक राजा भरतहरि है, उनसे कुछ सीखो, इसी राज्य की वो राजा है, उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और तुम इन छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। दोनों ही आत्मग्लानि से भर जाते हैं और सत्य की तलाश के लिए फिर से अपनी अपनी राह पर निकलते हैं। सोचते हैं ये कैसा अहंकार और ये कैसा अभिमान कि मैंने छोड़ा क्या, त्याग क्या किया, एक छटाक त्याग और कितना किलो भाग्य मिला। टन जो हम यज्ञ में कर रहे हैं भाग्य बना रहे हैं। कईयों को लगता है हमने ये किया वो किया, ये दिया वो दिया, क्या दिया तुमने? ईश्वरीय सेवा कैसे हो रही है? परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि कोई आत्मा अहंकार से भर जाती है कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, तो क्या कहेंगे? तो बाबा ने भाग्य की बातें बताई। इस भाग्य को बढ़ाना यदि है तो क्या करना है? इस लकीर को लंबा करना है, सितारे को चमकाना है, प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, अधिकार को ले लेना है। उसमें चार बातें करनी है, चार कहो या छह कहो। पहली तो साफ दिल, सच्ची दिल और साफ दिल, पहली। और दूसरी, जहां छल और कपट है वहां भाग्य खुंट जाता है, भाग्य बढ़ नहीं सकता। अंदर में अंदर एक और बाहर दूसरा है। बाबा के साथ सच्चाई जहां नहीं है, कलंक है और उसको छिपा रहे हैं। साफ दिल, सच्ची दिल। तीसरा श्रेष्ठ संकल्प और चौथा श्रेष्ठ कर्म। लकीर को खींचने का यह आधार है, लकीर को लंबा और स्पष्ट करने के आधार है। सभी नई बातें नहीं है, सभी ने सुनी है, परंतु फिर भी हृदय का शुद्धिकरण निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन इसे करना है, ऐसे नहीं कि एक बार कर लिया और हो गया। हर दिन हृदय में धूल जम जाती है, साफ हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, निर्मल हो, छल कपट ना हो, झूठ ना हो, स्वार्थ ना हो, ऐसा दिल उसको बहुत प्रिय है। और मुख्य रूप से तो बाबा ने आज प्रॉपर्टी पर चर्चा की है। प्रॉपर्टी को क्या करना है, एक तो संभालना है और दूसरा बढ़ाना है। संभालने की विधि, क्या करना है, स्वयं में धारण करना है। कब धारण करना है, ऐसे नहीं कभी धारण किया कभी नहीं, कभी धारणा स्वरूप कभी हलचल और डगमग स्वरूप, ऐसा नहीं। सर्वगुण और गुण स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, बहुत सुंदर उदाहरण बाबा ने यहां पर दिया है। शक्तियों की वो धारण करो, गुणों को धारण करो, परंतु सबको धारण करो। सहनशीलता को तो धारण किया, परंतु साथ में किसको नहीं कर लिया, समाया नहीं। वर्णन के लिए बाबा ने कहा है, हम अगर ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखो तो दो चीजों का कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि बाबा से, बाबा के मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं निकले कि मैंने ये त्याग किया। अपने त्याग का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। दूसरा, मैंने ये सहन किया, इसका कहीं वर्णन है? बाबा ने कहा ये वर्णन को कमाल समझते हो, परंतु ये कमाल ही क्या है, धमाल। पिछले संडे में भी था, समाने की शक्ति कम है यदि फैलाते हो तो। सहन करना बहुत अच्छा गुण है। जीवन प्रतिपल चोट करता है, हर क्षण चोट है, आघात करता है, परंतु जिसने सहनशीलता का कवच पहन रखा है वह सुरक्षित है। और ये सहनशीलता ही बल बन जाती है। परंतु यदि उसका वर्णन हो रहा है, मैंने इतना सहन किया, मैं कितना सहन करता हूं, मेरे जैसा सहन और किसी ने नहीं किया, क्या बाबा ने कभी ऐसा कहा? कहीं रिकॉर्ड है, कहीं लिखा है किसी किताब में कि बाबा ने ऐसा कहा था? कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। सहन। एक यात्री एक लुहार की दुकान से जाते रहता है तो देखता है कि लुहार की दुकान में एक कोने में बहुत सारी हथौड़ियां पड़ी हुई है। वो उसको कहता है कि ये जो निहाई है, निहाई पता है ना, एनविल, जिस पर वो तोड़ता है हथौड़े, इतने सारे टुकड़े करने के लिए हथौड़े के कितनी निहाई की आवश्यकता हुई होगी? वो लुहार कहता है कितने, एक ही निहाई, क्योंकि निहाई सहन करती है और हथौड़े चोट करते हैं, और जो सहन करता है वो शक्तिशाली हो जाता है। परंतु सहन करने के साथ कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की। सब कुछ अंदर समा लेना, वो समाना ही बल भर जाएगा एक दिन। इसके लिए खजाने, प्राप्ति, भाग्य, FAT, फैट, फॉर्चून, अटेनमेंट और ट्रेजर, ब्रह्मा कुमार बनते ही फैट बन जाते हैं, ऐसा फैट बनना चाहिए। तो इनको क्या करो, धारण करो, एक एक गुण को धारण करो, शक्तियों को धारण करो, जीवन में लाओ, जीवन में दिखाई दे, केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। एक दूसरा, अब इन खजानों को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, बांटते जाना है। बाबा ने क्या कहा आज वो बताओ, क्या करना है, यूज करना है खजाने को। कैसे यूज करना है? मन, वचन, कर्म से। दो प्रकार के सेवाधारी बताए, एक तो दिमाग वाले, दिमाग बहुत तेज है, बहुत पॉइंट्स बुद्धि में है। दूसरे हैं दिल वाले, लगन वाले, दिल से सेवा करने वाले। मैं क्या कर रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं, यह भाव, पत्थर तोड़ रहा हूं नहीं, कमाई कर रहा हूं ये भी नहीं। वैसे बाबा कहते हैं तुम उठो तो ये कमाई है, परंतु उसके भी ऊपर लगन, लगन से सेवा करने वाले। एक है जो दिल से सेवा करते हैं, लगन से सेवा करते हैं, वो औरों को दिलाराम का बनाते हैं। बाकी दिमाग से सेवा करने वाले क्या करते हैं, सिखाते हैं और बोलते हैं और बुलवाते हैं। ये पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एक है वर्णन करने वाले, दूसरा है मनन करने वाला, एक है कोर्स करते हैं। उसमें भी तीन चार बातें बताई। एक तो है राज 7 दिन का कोर्स कराना, दूसरा है शिविर कराना, तीसरा है धारणा शिविर कराना, वो बहुत बड़ी बात है, और चौथा है मुरली तक पहुंचाना। ये 4 काम है, परंतु लगन की जिम्मेवारी नहीं है। क्या कर देना है, आत्माओं में लगन हो जाए, लगन उत्पन्न हो जाए, इसको जिम्मेवारी समझे, वो आत्मा की लगन लग जाए परमात्मा के साथ, ये नहीं कर पाते। बाकी जो 4 कार्य बताए ये भी बहुत महान कार्य है, शिविर कराना, धारणा शिविर कराना, कोर्स कराना, मुरली तक पहुंचाना, परंतु बाबा ने कहा ये फिर भी क्या है, दिमाग वाले हैं, दिल से सेवा करने वाले, अर्थात लगन वाले, फोर्स भरने वाले, सेवाधारी समझ कर सेवा करने वाले, लगन से सेवा करने वो है नामधारी सेवा करने वाले। नामाचार होगा, नाम होगा, तुमने बहुत अच्छा बोला, अच्छा सुनाया, और उसी में खुश हो जाएंगे, परंतु हृदय से, प्राणपन से, उसमें स्वयं को पूरा झोंक दिया, जैसे उस आनंद मगन अवस्था में है, उस ईश्वरीय प्रेम में डूब कर की हुई सेवा, वो वास्तव में सेवा है, नहीं तो सेवाओं में टकराव है, संघर्ष है, अभिमान है, अहंकार का जागरण है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, वैराग पर मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा था वैराग जो है वो सेवा करो तो और वैराग बढ़ेगा संसार से, परंतु सेवा में ही वैराग खत्म भी हो जाता है, क्योंकि संघर्ष होता है। इसलिए दिल से सेवा, लगन से सेवा, आत्माओं को लगन लगाने की सेवा, परमात्मा से जोड़ने वाली सेवा, ऐसी सेवा करनी है, तो खजाने क्या होंगे, बढ़ेंगे, भाग्य बढ़ेगा, लकीर लंबी होगी, सितारा चमकेगा, अधिकार प्राप्त होगा, चारों ही चीजें हो जाएगी। तो टोटल 6 बातें हैं। सबसे पहली, साफ दिल, सच्ची दिल, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म। महान संकल्प करना है। कहां से मिलेंगे संकल्प महान? मुरलियों से। इसके लिए मुरलियों का अध्ययन करना, उनसे संकल्प लेना, उस पर प्रैक्टिस करनी है। जब तक महान संकल्प नहीं, श्रेष्ठ स्थिति नहीं बन सकती। और महान श्रेष्ठ कर्म, चौथा। 5वां, स्वयं में धारण करना, किन किन गुणों की कमी है, किन किन शक्तियों की कमी है, ज्ञान के किस पॉइंट की कमी है, क्यों स्थिति डगमग है, इसका चिंतन। 6वां, कार्य में लगाना, हर चीज को क्या करना है, मन वचन कर्म से सारे खजानों को कार्य में लगाना, अर्थात दिल से सेवा करना। ये 6 पॉइंट्स बाबा ने पूरी मुरली में कही है, यही आधार है भाग्य को बढ़ाने का। कुछ फरिश्तों की बात कही है, फरिश्ता अर्थात क्या, जिसका प्रकाश की काया है, सबसे पहली बात तो लाइट स्वरूप है, बुद्धि का पाव देह से ऊपर है, संसार के लोग देह के तल पर जी रहे हैं, हम इस तल पर नहीं, हम उसके ऊपर हैं। और कनेक्शन, संबंध किससे टूटा हुआ है, देह के भान से। ये चिंतन का विषय है कि मैं अपने देह भान से संबंध कैसे तोड़ूं, या फिर मेरा देह भान से क्या अभी भी संबंध है, ये जो कनेक्शन है इसको तोड़ देना, अर्थात फरिश्ता बनना। बाबा ने कहा ये अवस्था बहुत आकर्षण वाली अवस्था है, माया का आकर्षण नहीं होगा यहां, बहुत प्यारी अवस्था है अगर ऐसा हो जाए तो। दूसरी बात कही है, रूहानी गुलाब अविनाशी, बहुत मीठी खुशबू फैलाता है, रूहानियत की खुशबू फैलानी है। और तुमने एक सौदा किया है, कौन सा सौदा किया? बहुत बड़ा सौदा कर लिया, तीनों लोगों को ले लिया, बाप को ही अपना बना लिया, ये सौदा किया। ऐसा सौदा और कोई नहीं कर सकता, कितना भी चाहे कोई धनवान हो। और कहा कि ये सबसे बड़ा तुम्हारा सम्मान है, इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं है एक चीज के लिए। आज कहा है बहुत सुंदर महावाक्य है, मैं अल्लाह के बगीचे का पुष्प हूं, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सम्मान है। तो निरंतर वो खुशबू निकलती रहे। महादानी बनने के लिए भी कहा, संसार की आत्माएं दुखी है, अशांत है, हमें क्या करना है? देना है। अगर हम देंगे तो वो धन्यवाद देंगे हमको, और क्या करेंगे? गुणगान गाएंगे हमारे। महादानी बनना है, उसके सिवा क्या नहीं करना है? अगर नहीं करते तो नींद नहीं करनी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विश्व को रोज सकाश देनी है, सुबह एक बार, शाम को एक बार, बैठकर चलते फिरते दिन भर। परंतु आत्माएं अति दुख में हैं, इन्हें इसके लिए महादानी बन खुशी का खजाना बांटो। और सबसे अच्छी बात जो पहले भी सुनाई मुरली के प्रश्न की, मुख से क्या निकले, गले से क्या निकले? जो बाप ने सुनाया मुख की आवाज से वही निकले। क्या क्या? ज्ञान, क्या क्या गुण, क्या क्या महिमा, और हमारे मुख से क्या निकले? और क्या निकलना चाहिए मुख से दिन भर? शुभ भावनाएं, दुआएं, और ज्ञान रत्न, वरदान, वरदानी बोल, सम्मान वाले बोल, श्रेष्ठ बोल, महान बोल, ऐसे जो है वो बाप के गले का हार बनते हैं या हार में पिरोए जाते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं। तो सारी मुरली को यदि देखो तो एक बात है बाबा ने जो मुख्य रूप से कही है, वो है भाग्य। अपने भाग्य का चिंतन करना है कि मैंने क्या क्या पाया, पर्सनली मैंने क्या क्या पाया बाबा का बनने के बाद, मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। और यदि ये पाया है, अब इसको बढ़ाना है, इसको खर्च नहीं कर देना, इसको वेस्ट नहीं कर देना। एक है गंवाने वाले, एक है पाने वाले। बाबा ने इस मुरली में और एक बात कही, गृहस्थी और ट्रस्टी, ट्रस्टी और सेवाधारियों की। ऐसे नहीं समझना है कि जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनका भाग्य कम है और जो सेवा केंद्र पर सदा रहते हैं उनका भाग्य ज्यादा है। भाग्य का आधार त्याग है, त्याग ज्यादा भाग्य ज्यादा। यदि थोड़ा भाग्य पाना है तो थोड़ा त्याग, अगर थोड़ा ज्यादा भाग्य पाना है तो थोड़ा ज्यादा त्याग, अगर बहुत भाग्य पाना है तो बहुत त्याग, और सब कुछ ही पाना है तो सब कुछ ही त्याग। त्याग वास्तव में वस्तुओं का और बाहर की चीजों का नहीं है, अहम का है, मैं का है। ये जो मैं है बैठा हुआ, यही त्याग है। बाहर के त्याग तो स्वतः ही आ जाएंगे, पर वास्तविक त्याग है इसका। तो मुरली के इस वाक्य को भूलना नहीं कि हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए, जो बाप ने बोला, जो बाप ने कहा मुख की आवाज से वही निकले। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान आत्माओं को, यहां तकदीरवान आत्माओं शब्द का प्रयोग किया बाबा ने, पहले भाग्यवान, पद्मा पदम, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ त्यागी और श्रेष्ठ भागी, भागी शब्द का प्रयोग, ऐसे श्रेष्ठ त्यागी और श्रेष्ठ भागी आत्माओं को ऐसे बाप से सर्व अधिकार या खजाने को बढ़ाने वाले या संभालने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्वगुण स्वरूप आत्माओं को, धारणा स्वरूप आत्माओं को, सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म द्वारा भाग्य की लगीर को बढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे बहुत बड़ा है, ऐसे सर्वगुण और सर्वशक्तियों को जीवन में लाने वाली आत्माओं को, ऐसे दूसरी आत्माओं को प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाली आत्माओं को, ये पॉइंट भी उसमें था, दिल से सेवा करने वाले और दिमाग से सेवा करने वाले, दिमाग से सेवा करने वाले दूसरों को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करा सकेंगे, तो ऐसे प्रत्यक्ष फल या प्राप्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।
झूम रहा मेरा मन, मेरा मन।